अब आगे और सर्जरी किसी और की नहीं बल्कि एक बूढ़े व्यक्ति की होनी थी। ध्रुव थोड़ी देर सोचता रहा और उसके बाद उसने सर्जरी के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि ध्रुव के लिए किसी की जान बचाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। वहीं दूसरी ओर जैसे ही अरमान और बाकी सब जेंट्स चले गए, आस्था सबकी ओर गौर से बारी बारी से देख रही थी और साथ ही साथ ये भी देख रही थी कि सब लड़कियां इस वक्त कितनी ज्यादा उदास हैं, भले ही उसके सामने खुश होने की एक्टिंग कर रही हों। लेकिन जो कुछ भी पिछले दिनों मेंशन में हुआ था वो इतनी आसानी से उन लोगों के दिमाग से नहीं जाने वाला था। आस्था खुद स्ट्रेस में थी, इस स्ट्रेस में वो अरमान से बेहद डर रही थी, इसीलिए आस्था को हर हाल में अपना स्ट्रेस दूर करना था। इसीलिए उसने नानी माँ के कानों में कुछ कहना शुरू कर दिया। नानी माँ ने जैसे ही आस्था की बातें सुनी वो हंसने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, बदमाश, ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें ये सब करना है। तब आस्था ने अपना क्यूटली मुंह बनाकर नानी माँ की ओर देखते हुए रिक्वेस्ट करने लगी, नानी माँ प्लीज, आप तो मेरी अच्छी और प्यारी नानी माँ अम्मा है ना, प्लीज कर दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसा बोलकर आस्था जो कुछ करवाना चाहती थी उसने नानी माँ से करने के लिए कह दिया। और तभी रौनक हैरानी से आस्था के पास आई और कन्फ्यूजन से पूछी, क्या बात है आस्था, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तभी आस्था रौनक के कानों में भी कुछ कहना शुरू कर दिया और जैसे जैसे रौनक आस्था की बातें सुनी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए। वो जोरों से हंसते हुए आस्था के गली से लग गई और जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये एकदम बेस्ट प्लान है। और फिर बारी बारी से सभी को कानों में रौनक ने प्लान बता दिया और सभी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। सबने एक दूसरे को हाईफाई दिया और तैयार होने के लिए चल पड़े। आहान और ध्रुव अब जल्दी ही वहां से बाहर निकल चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने सोचा कि जब तक घर में कोई फंक्शन नहीं हो रहा है तब तक वो अपना कोई दूसरा काम निपटा लें। उनका दूसरा काम था डेविल किंग वाला। डेविल किंग के काम के लिए दोनों जल्दी बाहर निकल चुके थे और दादाजी अब अरमान को नॉर्मल देखकर थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे और शारदा जी यानी नानी माँ से विदा लेकर वो भी मेंशन से बाहर चले गए। और वो बताते हुए बोले कि इस वक्त वो थोड़ा सा अकेला रहना चाहते हैं, क्योंकि जब दादाजी काफ़ी हद तक उदास और मायूस हो जाते थे तो वो पास में ही बने एक पार्क में चले जाया करते थे। अरमान को उनकी सिक्योरिटी का बेहद ध्यान था तो इसीलिए सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी टीम हमेशा दादाजी के आसपास रहा करती थी। वहीं दूसरी ओर अब सिंघानिया मेंशन में केवल सभी लेडीज मौजूद थीं। वही आस्था जिसने अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए छोटा सा प्लान बनाया था, उसी के प्लान के अकॉर्डिंग अब सारे काम किए जाने लगे थे और जल्दी ही पूरे के पूरे हॉल का नक्शा बदल चुका था। राधिका और रश्मि बड़े ही खूबसूरत से छोटे छोटे ब्लाउज वाले लहंगे पहने थे जिनमें वो बड़ी ही प्यारी लग रही थीं। और आस्था ने एक रेड कलर का लहंगा चोली पहना था जिसमें उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि कोई भी उसे देख ले तो अपना दिल हार जाए। वही रौनक ने अपने सर पर एक लाल रंग की पगड़ी बांधी थी। वो एकदम पंजाबी लड़के के जैसा गेटअप किया था और बड़ी बड़ी मूछें लगाई थीं। और जल्दी ही आस्था ने नानी माँ के हाथों में एक ढोलकी थमा दी थी जिसे आस्था ने राजेश से मंगवा लिया था। अब तो पूरे के पूरे हॉल में एक अलग ही तरह की रौनक लगी हुई थी और जल्दी ही बैकग्राउंड में गाने बजने लगा।
मैं निकला आओ गड्डे लेके, ओ रस्ते पर ओ सड़क में, एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। उस मोड़ पे वो मुठियार मिली, जटियमला पागल हो गया, उसकी जुल्फों की छाँव में मैं बिस्तर डाल के सो गया। ओ जब जागा मैं भागा, सब फाटक सब सिंगल मैं तोड़ आया, मैं उठे दिल। बस एक नज़र उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी, क्या नाम था उसका रब जाने, मुझको रांझे की हीर लगी। ओ मैंने देखा एक सपना, संग उसके नाम अपना मैं जोड़ आया, मैं उठे दिल। शर्मा के वो यूं सिमट गई, जैसे वो नींद से जाग गई, मैंने कहा गल सुन ओ कुड़िये, वो डर के पीछे भाग गई। वो समझी ओ घर उसके, चोरी से ओ चुपके से कोई चोर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रौनक लड़का बनकर छेड़ते हुए रश्मि और राधिका के साथ ही साथ आस्था के आगे पीछे घूम घूम कर नाच रही थी। रौनक को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो लड़का है या फिर लड़की है, क्योंकि रौनक ने गेटअप बड़ा ही कमाल का किया था और जल्दी ही सभी नानी माँ की ढोलकी और साथ साथ गाने पर अच्छे से झूमने और थिरकने लगे थे। मेंशन का पूरा माहौल बदल चुका था। ब्रांडेड सोफे जो रखे हुए थे उन पर छोटे छोटे कुशन वगैरह रखे हुए थे। सबने एक दूसरे को फेंक फेंक कर उनके सारे कॉटन वगैरह निकाल उड़ा दिए थे। पूरा का पूरा हॉल कबाड़खाना बना दिया गया था, लेकिन उन लोगों की मस्ती कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आस्था तो इतना ज्यादा डांस कर रही थी, उसने भर भर कर चूड़ियां पहनी थी और एकदम लहराते बलखाती रौनक के आगे पीछे डांस करते हुए मटक रही थी। रौनक कभी उसकी कमर पकड़कर उसे घुमा रही थी तो कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका हाथ पकड़कर उसके साथ डांस कर रही थी। रौनक बारी बारी से कभी राधिका के साथ डांस कर रही थी तो कभी रश्मि के साथ डांस कर रही थी। प्रियंका ने इन सब मामलों से खुद को दूर रखा था और वो तो ये शोरगुल सब कुछ देखकर पूरी तरह से चिढ़ गई थी और सीधा अपने आप को अपने कमरे में लॉक कर लिया था। दूसरी तरफ वही सब लोग जो ऑफिस गए हुए थे, अब किसी का भी काम में दिल नहीं लग रहा था। सबके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि इतना कुछ हो गया था सिंघानिया मेंशन में, उसके बाद से उनके दिल की हालत काफी ज्यादा अजीब हो गई थी। तो इसीलिए सभी ने डिसाइड किया कि वो जल्दी मेंशन में जाएंगे और कुछ ना कुछ इस तरह का प्लान करेंगे कि थोड़ी बहुत सिंघानिया मेंशन की मायूसी कम हो। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए जल्दी से वो लोग सीधा अरमान सिंघानिया के ऑफिस में जा पहुंचे थे, क्योंकि बिना अरमान को बताए वो कुछ भी नहीं करना चाहते थे। अब अरमान ने जैसे ही उन चारों का आइडिया सुना, उसे भी सही लगा, क्योंकि वो आस्था को मायूस बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। वहीं आकाश भी रश्मि की आंखों में मायूसी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ध्रुव और आहान पूरे के पूरे घर को एक बार फिर से खुशहाल बनाना चाहते थे। तो सभी के दिमाग में इस वक्त कुछ ना कुछ प्लान चल रहे थे और उन्होंने डिसाइड किया कि आज वो सभी लेडीज को बाहर घूमने के लिए ले जाएंगे और इन द लास्ट सबके सब सुमित के होटल में डिनर करेंगे। तो इसी बहाने वो सब जल्दी ही आज सिंघानिया मेंशन आ पहुंचे। वहीं दूसरी ओर दादाजी भी जल्दी ही घूम फिरकर सिंघानिया मेंशन आ गए थे और जैसे ही वो सिंघानिया मेंशन आए, सिंघानिया मेंशन के बाहर से ही उन्हें कितनी ही सारी अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गई थीं, क्योंकि नानी माँ की ढोलकी उनका गीत साथ साथ राजेश को उन्होंने गाना बदलने पर लगा रखा था। कभी पल पल ना माने टिंकू जिया इस तरह का गाना बजा रहा था तो कभी अभी तो पार्टी शुरू हुई है ये वाला गाना बज रहा था, तो कभी मैं निकला गड्डी लेकर ये वाला गाना बज रहा था। अलग अलग तरह के पार्टी सॉन्ग्स इस वक्त वहां चल रहे थे और सभी सॉन्ग्स पर आस्था, रश्मि, राधिका साथ ही साथ रौनक खूब ज्यादा थिरक रही थी। बेहद वो चारों सब मस्ती के मूड में थी। तीन लड़कियां थीं, एक लड़का था और रौनक सबको अलग अलग तरीके से जहां मर्जी वहां छू रही थी, पूरा लड़का होने का फर्ज निभा रही थी। अब जैसे ही मेंशन के बाहर से उन सबको इस तरह की आवाजें आना शुरू हुई तो सब पूरी तरह से चौंक गए थे। अरमान ने घूर कर टाइगर को देखा, मानो कि वो उसे कहना चाह रहा हो कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि मेंशन में इस तरह का बवाल मचा हुआ है।
सभी एक साथ अब जल्दी से दौड़ते भागते सिंघानिया मेंशन के अंदर आ गए और जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरे के पूरे हॉल की थीम एकदम पार्टी थीम थी और उस वक्त वहां का माहौल बड़ा ही अलग था। लाइट टिम थी, लेकिन आस्था, रश्मि, राधिका बेहद खूबसूरत और साफ दिखाई दे रही थीं। वहीं रौनक, जो कि उस वक्त लड़का बनी हुई थी, बीच बीच में वो कभी राधिका की कमर को छू रही थी तो कभी रश्मि की कमर को रौनक छू रही थी और कभी आस्था की कमर को छू रही थी। अब जैसे ही आकाश, सुमित और साथ ही साथ अरमान ने ये देखा, उनकी आंखें आग उगलने लगी थी। वहीं सुमित को भी राधिका का इस तरह से किसी लड़के का छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने अपने हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया था। वहीं अरमान का हाल तो ऐसा हो रहा था मानो कि वो लूट गया हो। आस्था के ऊपर वो किसी की परछाई तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और यहाँ तो एक लड़का उन्हीं के मेंशन में बिंदास होकर खुल्लम खुल्ला आस्था की बड़ी ही खूबसूरत कमर को छू रहा था, तो अरमान के लिए ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका था और वो घूर कर कभी आस्था को देख रहा था तो कभी उस लड़के को देख रहा था। इतने ही नहीं, आहान और ध्रुव को भी अब गलतफहमी हो गई थी और वो भी अब घूरकर रौनक को देखने लगे थे और सोच रहे थे कि इस लड़के की इतनी हिम्मत हो गई कि खुल्लम खुल्ला तीनों भाभियों पर वो हाथ साफ कर रहा था, क्योंकि रश्मि, राधिका, आस्था तो उनके भाभी ही थीं, तो इसीलिए उन्हें तो यही लग रहा था कि ये लड़का कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर खुल्लम खुल्ला उनकी तीनों भाभियों के साथ मौज मस्ती और इन्जॉय कर रहा था, तो उनका भी अब खून उबलने लगा था। वहीं आकाश तो दिल कर रहा था कि या तो अभी इस वक्त रश्मि की जान ले लेगा या फिर वो उस लड़के की जान ले लेगा जो लड़का इस वक्त रश्मि को छू रहा था। अब सभी गुस्से से लाल पीले होकर वहां खड़े थे। वहीं दादाजी मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे क्योंकि नानी माँ भी उस वक्त वहां मौजूद थीं और इंजॉय करते हुए ढोलकी बजा रही थी, तो दादाजी को बड़ी ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र इस तरह से अपने चारों पौत्रों पर गई तो वो भी अब थोड़ा सा हैरान हो गए थे। लेकिन उन्होंने रौनक को पहली नज़र में ही पहचान लिया था। वहीं वो सभी लड़के रौनक को पहचान नहीं पाए। उन्हें तो यही लगा था कि कोई लड़का यहाँ घुस आया है और इस तरह से सब लड़कियों के साथ मौज मस्ती कर रहा था। कहीं ना कहीं उन सबको राधिका, रश्मि और आस्था पर भी गुस्सा आ रहा था कि इस तरह से कैसे भला वो इतनी आसानी से किसी और लड़के के साथ डांस कर सकती है। और फिर अचानक देखते ही देखते टाइगर ने आगे बढ़कर अरमान की आंखों के इशारे देख लिए थे और आगे बढ़कर उसने फटाफट से राजेश, जो कि डीजे पर बैठा हुआ था, फटाफट से वहां से डीजे उठाया और उसे हॉल में फोड़ दिया। डीजे के नीचे गिरते ही तुरंत आवाजें आनी बंद हो गई थी और गाना बंद हो गया था। केवल अब सिर्फ नानी माँ की ढोलकी की आवाजें आ रही थी। लेकिन टाइगर ने आगे बढ़कर नानी माँ की ढोलकी छीनते हुए ली और उसे भी जमीन पर नीचे पटक दिया। और सब तभी ध्रुव, आहान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए। सुमित, आकाश, अरमान को छोड़कर हम सब ने जाकर तुरंत रौनक को गन पॉइंट पर ले लिया था। अब तो राधिका, रश्मि, साथ ही साथ आस्था भी पूरी तरह से चौंक गई थीं कि अचानक से यहाँ सब क्या हो रहा है, सब लड़के इतना भड़क क्यों रहे हैं। वो सब तो पूरी तरह से मौज मस्ती करने में बिजी थीं। उन्हें क्या पता था कि इस तरह से कुछ हो जाएगा। अब जैसे ही उन सब ने सबको देखा तो सभी लड़कियों की हैरानी से आंखें फैल गई थीं। वो कभी गन पॉइंट पर खड़ी हुई रौनक को देख रही थीं, तो कभी अरमान को, टाइगर को, सबको देख रही थीं। वहीं नानी माँ भी टाइगर को देखने लगी और मन में कोसते हुए बोली, घोड़े को अचानक से क्या हो गया है? इसने मेरी ढोलकी क्यों फोड़ दी? कीड़े पड़ेंगे इस मुर्दे को। कहीं ना कहीं नानी माँ मन मन में टाइगर को कोसने लगी थी, लेकिन फिलहाल वो कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि इस वक्त रौनक गन पॉइंट पर थी। वहीं अरमान का हाल तो ऐसा हो रहा था कि अभी और इसी वक्त अपनी आंखों से ही जलाकर सब कुछ खाक कर देगा। तभी आस्था तुरंत अरमान के पास गई और कन्फ्यूजन से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है अरमान जी, और आपने ये क्या किया? आपने उसे गन पॉइंट पर क्यों ले लिया? प्लीज छोड़ दीजिए इसे। अब जैसे ही आस्था ने अरमान की ओर देखकर ये बोला, अरमान अब उगलती आंखों से आस्था की ओर देखकर सोचने लगा कि इस लड़की को, इस अजनबी लड़के की इतनी फिक्र हो रही है। आखिर ये करना क्या चाह रही है? क्या इसे ये नहीं पता कि अरमान सिंघानिया सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनी बीवी पर, अपनी चीज पर किसी की भी परछाई बर्दाश्त नहीं कर सकता? और लड़की कितने धड़ल्ले से उस अनजान लड़के को बचा रही है। अब अरमान घूरकर आस्था को देखने लगा था। वहीं आहान अब रौनक की ओर गुस्से से देखकर बोला, कौन है तू? फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से हमारी ब्यूटीफुल भाभियों के साथ डांस करने की? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हमारी भाभियों को इधर उधर छुएगा? हाँ, और तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। आज तो मैं तेरी यहीं कब्र खोद दूंगा।